आएंगे। आज हम प्रभुपाद के इस ग्रंथ के 63, 63, 64 और 65वें पन्नों के ऊपर कुछ चर्चा करने वाले हैं। भगवद गीता में भगवान अपने कार्य का वर्णन इस प्रकार से करते हैं, यहां पर श्री प्रभुपाद लिखते हैं, इन द भगवद गीता द लॉर्ड सेज दैट ऑल हिज एक्ट्स इवन हिज अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस इन एंड आउट ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड आर ट्रांसेंडेंटल एंड वन हु नोज दिस परफेक्टली वेल शैल नॉट टेक हिज बर्थ अगेन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड बट विल गो बैक टू गॉड इट। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। एक सबसे बड़ा रहस्य इस संसार की समस्याओं को, इस संसार की समस्याओं का अविरत चलते रहना, वो ये है कि जीवों का तीन गुणों के साथ संबंध आना। गुण का अर्थ है गुणधर्म, क्वालिटी, और गुण का अर्थ है एक रस्सी जो बांध के रखती है। भागवत में कहा गया है जैसे एक बैल के नाक से रस्सी जाती है और जो किसान है या बैलगाड़ी वाला है वो केवल उस रस्सी को पकड़कर उसको बताता है किस दिशा में जाना है, तो पशु जिसके नाक से वो रस्सी गई है वो बेचारा असहाय हेल्पलेस है, उसे अपने अपने कार्य पर उसका नियंत्रण नहीं रहता, अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रहता, और अगर भगवान से पूछा जाए कि कोई ऐसा है इस भौतिक जगत में जो तीन गुणों से मुक्त है या तीन गुण उसके ऊपर प्रभाव नहीं करते, तो भगवान कहते हैं कि नहीं, कोई नहीं। त्रिभीर गुणमयीर भावेर ए भी सर्वम, तीन प्रकार के गुण, उन गुणों का संसर्ग, ये संसर्ग या उनका प्रभाव, ये भी थोड़े माइल्ड वर्ड्स हैं, थोड़े नाजुक कोमल शब्द होते हैं। पूरा कंट्रोल, बिल्कुल कुछ कंट्रोल का, नियंत्रण का कोई चांस ही नहीं है जीव को कि इंडिपेंडेंटली बिना बिना गुणों के पूछे कुछ करेगा वो। तो गीता में यज्ञ, दान, तप, क्रिया, ये सब कार्य किस क्यों बताए गए, ताकि धीरे धीरे क्रमशः हम इन गुणों के प्रभाव से, गुणों के प्रभाव में नहीं आए। एक सिंपल उदाहरण है, कई लोग हैं जिनको गुस्सा आ रहा है ये पता चलता है, जैसे अगर कोई नौकर है, कोई सबॉर्डिनेट है, कोई काम करने समय गलती कर रहा है तो वो कह रहे हैं कि अब मुझे गुस्सा आ रहा है, अब आप बात ज्यादा मत कीजिए नहीं तो मैं कुछ भी बोल दूंगा, या कभी कोई कहता है अब मुझ पर खून सवार हो रहा है, अभी आप निकल जाओ यहां से भले ही कुछ मैं या को मैं भला बुरा कह दूं, तो वो देखते हैं वो प्रभाव धीरे धीरे दिमाग पर आ रहा है। वो जैसे जुआरी होते हैं, वो अगर गैम्बलिंग का कोई मशीन या गैम्बलिंग का गेम देखते हैं तो वो अंदर से वो देख सकते हैं कि अंदर अभी इच्छा आ रही है, तो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, ये सब धीरे 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 वो जैसे कोई कुआं पानी से भरता जाता है, कोई तालाब पानी से भरता जाता है, वैसे धीरे धीरे यू कैन फील इट, हम उसको अनुभव कर सकते हैं कि अभी ऊपर आ रहा है। लेकिन अगर वो गुणों का कंट्रोल इतना रहा कि एक समय ऐसा आ सकता है जब पता ही नहीं चलेगा कि हम कैसे काम करते हैं, जैसे स्विच दबाया तो फैन चालू हो गया। अभी फैन को किसी ने पूछा कि आपको अभी घूमने की इच्छा है क्या? फैन तो निर्जीव वस्तु है, लेकिन हम तो जीवित हैं ना, हमारे पास तो कंट्रोल है हमारे ऊपर। लेकिन अगर ये गुणों का प्रभाव एक लिमिट के आगे गया तो ये स्वतंत्रता, ये इंडिपेंडेंस भी चला जाता है। फिर व्यक्ति क्या नहीं करता? फिर कई लोग जो क्रिमिनल कोई गुनाह में फंस जाते हैं तो बाद में उनको पछतावा होता है कि मैं ऐसे क्यों किया। कोई ऐसे होता है जो इतने डल हो जाते हैं कि उनको यह भी समझ में नहीं आता, इतने उतना वो गुणों का प्रभाव होता है कि मैंने ये क्यों किया भी पता चलता नहीं। फिर उनका मन उसके लिए सपोर्टिव कारण, नहीं नहीं ये ऐसे सही था, मेरा काम सही था। जैसे रावण, कुंभकर्ण, जरासंध, दंतवक्र, विदुरत, इन सब असुरों को अगर पूछा जाए कि आपको पता नहीं ये सामने है वो बहुत बलशाली है। पूतना जब भगवान को मारने आई तब भागवत में वर्णन है उसके मन में क्या चल रहा था, वो कि ये बालक तो ब्रह्मांड का नाश कर सकता है। अब ये दिस इज परफेक्ट गॉड रियलाइजेशन। हम इतना भागवत पढ़ने के बाद भी ऐसा गारंटी नहीं मन में कि ये कृष्ण सही में कुछ कर सकते हैं कि नहीं। फिर हम उनको अपने जीवन की कुछ समस्या देते हैं कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है, इसको पहले सॉल्व करो। मैं तो एक बार टेंपल में मेरे चाबी का बंच खो गया था तो मैं राधा गोपीनाथ के सामने कहा कि आप सही में सुप्रीम पर्सनालिटी हो तो पहले मेरा बंच ढूंढ के निकालो। फिर पता चला मैं क्या मांग रहा हूं। तो भगवान देते हैं और देने के बाद हम अपनी मूर्खता के ऊपर विचार करते हैं कि ये क्या जाके मांगा मैंने, कोई समस्या भी तो बड़ी होनी चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। तो पूतना, कंस, जरासंध, रावण, इन सबको एक जीवन के दौर पे या एक मुहूर्त पर फुल गॉड रियलाइजेशन होता है, 100% भगवत साक्षात्कार। बट इट इज टू लेट। जब कंस के छाती के ऊपर बैठकर भगवान उसको ताड़न कर रहे थे, मार रहे थे, तो बाकी लोग देख रहे हैं कि ये सुंदर कोमल बालक है 10-11-12 साल का, उसके हाथों से क्या कोई मरेगा आदमी। लेकिन कोई लोगों ने देखा था कि अरे इसने ये कोले या पीड़ को फेंक दिया था, और भगवान दिखाने के लिए कि ये कौन आ रहा है चाणूर मुष्टिक शल तोशल के साथ युद्ध करने के लिए, उन्होंने वो कोले या पीड़ हाथी का दांत भी तोड़ दिया और वो ऐसे लेके आए रंगशाला में। जब लेके आए तो लोगों ने ये कैसे हो सकता है। और वहां की स्त्रियां जो थी मथुरा की आई हुई, वो वहां पर वो बोल रही कि ये हमसे देखा नहीं जा रहा, ये इतने बड़े बड़े बलवान मल्ल है यहां पर और ये छोटा सा बालक है, ये कैसे हो सकता है। तो ये उनकी बुद्धि है, ये प्रेम और सद्भावना, स्नेह, वो इतना आ गया कि भगवान की भगवत्ता को भूल गए। तो एक जैसे ये विशेष सर्कल बोलते वैसा है। जीव गुणों का प्रभाव क्यों नहीं जान सकता? क्योंकि उसके ऊपर गुणों का प्रभाव है। तो हम कहेंगे ये कैसे, फिर हाउ डू वी गेट आउट, कि क्यों तुम गुणों में फंसे हुए हो? बोले क्योंकि मैं गुणों में फंसा हुआ हूं। तो इसलिए इससे बाहर निकालने का कोई रास्ता होना चाहिए। कम से कम इतना तो हमें गारंटी होना चाहिए कि गुणों के प्रभाव के अंदर कोई भी काम करने से हम गुणों के प्रभाव से बाहर नहीं आ सकते। तमस तो पूरा ही ना, नो। रजोगुण में केवल एक्टिविटी है, लेकिन वो एक्टिविटी भी बहुत अनकंट्रोल्ड है, बहुत पैशन है, बहुत डिजायर है, बहुत लाभ की बहुत इच्छा है। सत्वगुण में ज्ञान है, सत्वगुण में धैर्य आता है। जैसे किसी को कहो कि थोड़ा सब्र करो, अगर व्यक्ति कहेगा ठीक है मैं रुकने के लिए तैयार हूं। जैसे अगर किसी को पूछा जाए कि ये कोई फिट उदाहरण नहीं है लेकिन अभी मन में आ रहा है तो बोल रहा हूं कि कुछ बासी पदार्थ हैं एक दो दिन पहले हुए, वो खाना चाहोगे या गरम गरम भोजन तैयार है लेकिन एक घंटा लगेगा फिर भूख लगेगा फिर आपको मिल जाएगा। तो कोई कहेगा नहीं 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 जो भी है लाओ, बस भूख लगी है अभी। तो जो थोड़ा सब्र करने की इच्छा सबूरी से लेगा तो उसे एक घंटा रुकना पड़ेगा लेकिन कुछ गर्म मिलेगा। एक प्रोफेसर हैं या थे, उन्होंने क्या किया, कुछ बच्चों को 5 या 4-5 साल की उम्र में, मतलब केजी या फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों को, उनको क्या समझ में आएगा कोई साइंटिफिक टेस्टिंग वगैरह, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं इन्हीं को हमको देखना है। और उन बच्चों को उन्होंने सबके सामने पहले छोटी छोटी मिठाई स्वीट्स कैंडी चॉकलेट जैसा कुछ लाया और वो पूरे ग्रुप को रखा और उन्होंने कहा आपके हर एक के सामने एक बॉक्स है, उस बॉक्स में कुछ मिठाई है, चॉकलेट है, कैंडी है वगैरह वगैरह। हमारी इच्छा यह है कि आप इसको आधे घंटे बाद खोलना, तब तक खोलना नहीं उसको, देखना नहीं उसको। और उन्होंने वो रूम बंद कर दिया और वो देख रहे दूसरी जगह से देख रहे थे कोई कौन क्या कर रहा है। कुछ 90 बच्चे थे ना, उसमें से 84 कैसे, उन्होंने तुरंत खोल दिया उसको कि देखिए, एक तो बताया कि इसमें मिठाई है चॉकलेट है और अभी बोल रहे हैं कि मत खोलो। लेकिन सरप्राइजिंगली आश्चर्य की बात है कि 6 बच्चों ने उन्होंने कहा कि नहीं अभी बोलते हैं कुछ देर के बाद खोलो, तो जो बताएंगे तभी खोलेंगे हम नेचुरली। फिर उन्होंने उन बच्चों का उस फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर यूनिवर्सिटी के बाद उनका जॉब प्रोफेशन जो भी कुछ है वो देखने के लिए उन्होंने उनका ट्रैक रखा। एक पहले से उनकी बात हुई थी कि उनके माँ बाप के साथ कि ये कितना ग्रेड मिलता है, कितना मार्क्स मिलते हैं, नंबर कितने आते हैं, फिर जिंदगी में क्या करता है वो, मतलब ये लगे हुए उनके लिए 20 साल लगे ये सब सर्वे करने के लिए। और 20 साल के बाद क्या पता चला उनको, अब बोलेंगे ये चॉकलेट खाने में किसी ने उतावलापन किया तो क्या कौन सी बड़ी बात है, तो बच्चा है। बट दे वर सो सरप्राइज, उनको इतना आश्चर्य हो गया कि बाकी लोग थे ना जिन्होंने अपना सामने रखा तुरंत फोड़ के खाना चालू कर दिया, वो कोई गुनाह नहीं था लेकिन उनका जीवन एवरेज था, उनका परफॉर्मेंस स्कूल में कॉलेज में नौकरी धंधा पेशे में एवरेज। और ये जो लोग जिन्होंने थोड़ा सबूरी दिखाया धैर्य से काम लिया वो हर एक फील्ड में अपने बाकी लोगों से कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे थे, स्टडीज में अच्छे थे, स्वभाव में अच्छे थे, उनका मैरिज लाइफ भी थोड़ा अच्छा था। ये एक स्टडी है, ये अभी भी अवेलेबल है, आप कोई जाके पढ़ सकते हैं इसका रिपोर्ट। तो इसका मतलब ऐसा है कि सेल्फ रिस्ट्रेंट अपने आप के ऊपर नियंत्रण रखना ये केवल सत्वगुण में आ सकता है, सत्वगुण के अलावा नहीं आएगा। सत्वात संजायते ज्ञानम, धीरज पेशेंस कॉन्फिडेंस डिटर्मिनेशन ये सत्वगुण के प्रभाव से आते हैं। लेकिन भगवान बताते हैं कि ये सत्वगुण है ये ज्यादा दिन टिकता नहीं, ज्यादा देर। हर एक मानव को जितने 6.5 बिलियन लोग हैं इस धरती पर, सबको सुबह सुबह सत्वगुण का एक कुरियर से पैकेज आता है आपके घर में फॉर एवरीबडी फ्री ऑफ चार्ज. ब्रह्म मुहूर्त है, सूर्योदय के पहले का एक प्रहर, एवरीबडी गेट्स ए पैक ऑफ सत्वगुण. अब हम उस समय सोते रहेंगे तो वो चला जाता है. आप देखें कभी सूर्योदय के पहले अगर आप बाहर जाकर कुछ रजोगुणी कार्य करने की इच्छा भी होगी ना तो वो भी वो दब जाती है. कुछ तोड़ने की फोड़ने की चिल्लाने की अगर इच्छा है तो सुबह सुबह सोचते हैं कि नहीं नहीं कोई ज्यादा आवाज कर रहा है, बोले शांत रहो ना, कितना अच्छा समय है. क्योंकि ये ब्रह्म मुहूर्त है, उसमें ब्रह्म साक्षात्कार के लिए जो भी आत्म साक्षात्कार के लिए जो कार्य है वो करने के लिए खास समय दिया गया है. एक हमारे सन्यासी बता रहे थे कि खास करके आजकल के यूरोपियन अमेरिकन या प्रथागत प्रगत लोग अगर सुबह जल्दी उठते भी हैं 5, 5:30, 6 बजे तो पहले पहले चाय या कॉफी पीकर जो भी फ्री में सत्वगुण मिला है उसको दूर भगा देते हैं कि ये ज्यादा ही सत्वगुण हो रहा है, ये क्या मेरे मन में विचार आ रहे हैं. तो कलयुग का लाइफस्टाइल से जो भी थोड़ा सा कुछ सत्वगुण बचता है, एक बूंद अगर गिरेगी आपके घर में तो वो भी आप निकाल देते हो. और जैसे ही सूरज उगता है फिर ये जो 7:30-8 बजे का समय है, एक कभी एक्सपेरिमेंट कीजिए. मैंने किया था, वो हम लोग वीटी स्टेशन पे थे और कहीं से आए थे और हमारा बुक स्टॉल लगने वाला था तो मैं वहाँ पर 4:45-5 बजे से देखता था कि कैसे ये कैसे दिखता है वीटी स्टेशन भी. वीटी स्टेशन ये तो कोई ऐसे उद्यान बाग बगीचा तो है नहीं, दिन भर आवाज आवाज आवाज. लेकिन सरप्राइजिंगली सुबह 5:15 बजे शांत था एकदम. एक दो वो ट्रेन चली गई जो भी पुणे वाली जाती है, उसके बाद शांत. 6, 6:30, 7, 7:30 और 7:30 एक ऐसा समय आ गया जब ये जोरदार बोलने वाले, ये गाड़ी इधर जाएगी, ये गाड़ी उधर जाएगी, लोग फिर चल रहे हैं बात कर रहे हैं. कुछ ही देखते देखते जो भी सत्वगुण का थोड़ा सा ट्रेस था चला गया और फुल स्केल रजोगुण चालू हो गया. अभी सब लोग भाग रहे हैं, ये पकड़ना है, वो पकड़ना है, ये प्रोजेक्ट देना है, इसको मिलना है, क्लाइंट को मिलना है, ये करना है, वो करना है. एक तो रजोगुण आता ही रहता है, फिर हम लोग बात करते रहते हैं, वो भी रजोगुण है. ट्रेन में जाके देखो क्या बातें होती है, केवल वही बातें. मैं एक सुबह मॉर्निंग वॉक जाता हूं तो वहां पर 2-3 लोग हैं, आज तक मतलब ये 1.5 साल पुरानी बात, 1.5 साल से मैं देख रहा हूं, वो सुबह सुबह पैसे के अलावा और कोई बात करते ही नहीं. कि इधर 25,000 था, फिर वो 40,000 गया उधर, फिर वो म्यूचुअल फंड है. रुबीनी का ये आप सेहत बनाने के लिए आए हैं, सुबह 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 का समय है, थोड़ा कुछ दूसरी कुछ बातें कीजिए, ईश्वर भक्ति की आपको तो पता है ही नहीं. जो पता है सामने वो जैसे जो बॉक्स है उसमें मिठाई है, खोलने में क्या अर्ज है. फिर किसी ने ट्रेनिंग दिया ही नहीं कि उसको अगर रुकोगे थोड़ा तो आपके जीवन की शैली, जीवन की हैबिट्स अच्छे बनते जाएंगे. क्या हम भक्ति में आने के बाद, हरे कृष्ण मंत्र जप करने के बाद त्वरित हमारी सारी आदतें बदल जाती है? ना, ऐसा भी हमको ऐसी भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए. एक बात जरूर है, चाहे कोई तमोगुण के सबसे नीचे पॉइंट पे क्यों ना हो, वो अगर हरे कृष्ण मंत्र का जाप करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो निश्चित उस समय के लिए वो शुद्ध सत्व में स्थित है, नॉट इवन सिंपल गुडनेस. सादा सत्व है, उसके ऊपर रजो और तमोगुण का प्रभाव हो सकता है और होता ही रहता है. भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ये तीन ऐसे हैं, एक के ऊपर एक हावी होने की उनकी श्रृंखला चलती रहती है. लेकिन ज्यादा करके सत्व मार खाता है हमेशा, इज ऑलवेज बीटन बाय तमो एंड रजोगुण. भगवान बताते हैं कि मेरा इस भौतिक जगत में आना दिस इज द ओनली चांस, ये एकमात्र संधि उपलब्ध है कि ये खास करके ये दो गुणों के प्रभाव से हम बच सकते हैं। इसलिए कभी कभी भागवत में भी ये श्लोक आता है, तदा रजस तमो भावो, जब आध्यात्मिक जगत में प्रगति करना है तो ऐसे बताया जाता है कि रजो तमोगुण को कम करना है, रजोगुण तमोगुण कम करना है। लेकिन वास्तविक फुल स्क्वीकी क्लीन बोलते हैं जिसको, एकदम क्लीन करने के लिए ये जो भौतिक सत्व गुण है इसके ऊपर भी जाना चाहिए, इसलिए कहते हैं उसे शुद्ध सत्व। तो भगवान का आविर्भाव है वो शुद्ध सत्व का है। भगवान कहते हैं कि इस दुनिया का कोई भी गुण, भौतिक जगत की कोई भी वस्तु मुझे आकर्षित नहीं करती, और यही एकमात्र हमारे लिए एकमात्र एक आशा का किरण है। ये गुण है भगवान की प्रकृति के सेवक, और ये टोटल प्रकृति भगवान की सेविका है। तो भगवान कहते हैं कि ये कोई पॉसिबल ही नहीं है कि ये गुण मुझ पर आ जाए, या ये मैं कोई काम करूं जो रजोगुणी तमोगुणी हो। आगे श्री प्रभुपाद भगवान को यहां इस श्लोक में आत्मा राम बताया गया है, इसका डेफिनेशन देते हैं। ये मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कभी पढ़ा नहीं था पहले बाकी किसी जगह पर, तो आज सोचा आज इसके ऊपर थोड़ा और अधिक गौर किया जाए। यहां पर प्रभुपाद जी कहते हैं, बिकॉज द लॉर्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ द डिवोटीज एंड द डिवोटीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ द लॉर्ड रेसिप्रोकली, द डिवोटीज आर सडनली ट्रांसेंडेंटल टू द मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर। ये एक बहुत अजीब बात कृष्ण भक्ति में आने के बाद आचार्य बताते हैं। भगवान कौन है? भक्त की संपत्ति है। और भक्त कौन है? वो भगवान की संपत्ति है। ऐसे कैसे अचानक भगवान ये कैसे बोलने लगे कि ये भक्ति मेरे सब कुछ हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते थे कुछ भक्तों को देखकर, परमानंद पुरी को देखकर उन्होंने कहा था, मेरा शरीर ये परमानंद पुरी की प्रॉपर्टी है, अगर वो चाहे तो मुझे बाजार में बेच सकते हैं। मतलब इतना प्रेम इस जगत में दिखता नहीं कहीं भी। कोई किसी लिए कुछ करेगा लेकिन कोई कहेगा कि क्या आप मेरी प्रॉपर्टी हो? बोला ना, प्रॉपर्टी क्या, मैं अपने आप में कुछ हूं ना, हाउ कैन आई से मैं किसी की प्रॉपर्टी हूं करके। तो भगवान यहां पर कहने के लिए केवल ऐसे इस भौतिक जगत में अगर कोई गुलाम है उसको पूछेंगे क्या आप इसके गुलाम हैं, तो क्या वो प्रेम से गर्व से कहेगा कि हां मैं इसका गुलाम हूं? शर्म के मारे कहेगा ऐसे? किसी को पूछोगे ये नया जॉब कैसा चल रहा है, अरे बहुत तकलीफ है। अरे आपने एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है इसलिए नया जॉब लिया ना? हाँ लेकिन काम बहुत है। मतलब अपनी इच्छा से गया उधर वो, लेकिन प्रेम थोड़ी कहता है वो। तो नया बॉस कैसा है? अरे एकदम बेकार है। मतलब बॉस बेकार है, काम बेकार है, जर्नी बेकार है, जहां मैं करता हूं वो बिल्डिंग भी बेकार है। तो अच्छा क्या है, वो पैसा तो आ रहा है वो अच्छा है, हाँ लेकिन महंगाई बढ़ गई है वो भी चला जाता है। मतलब आदमी एंड में सब कुछ, हर चीज को दूषण देना, यही भौतिक जगत की एंड परिणति है। व्हाट इज द एंड रिजल्ट? क्रिटिसाइज एवरीबॉडी। और भक्ति में पूरा उल्टा है। भगवान अपनी तरफ से आरंभ करते हैं कि मैं इनका काम करता हूं नहीं, मैं इनके ऊपर प्रसन्न हूं नहीं। सी द लेवल ऑफ हिज अटैचमेंट, मैं इनकी प्रॉपर्टी हूं। अब भगवान जैसा ऑल पावरफुल, सबसे श्रीमंत, सबसे सुंदर, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हमारा गुलाम हो तो हमारे लिए अच्छा ही है ना। लेकिन भगवान को अपना गुलाम बनाने के लिए एक छोटी सी कंडीशन है, हमको भगवान का गुलाम बनना पड़ता है। ये जो रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, इन सबको कृष्ण विष्णु के साथ रिश्ता चाहिए था। कैसा रिश्ता? कि मैं कुछ बोलूं और आप करो। तो भगवान कहते हैं कि आई डू इट, मैं ऐसे करता हूं। गोपियां छोटे बालक कृष्ण को कहती है कि जरा नाच के दिखाओ गोपाल, और वो नाच के दिखाता है। तेरे दांत कितने हैं? तो कहते हैं कि अभी तक सारे नहीं आए। नंद महाराज जब घर में भोजन के लिए आते हैं तब यशोदा माता कहती है इनके खड़ाओ रख दो। तो ये खड़ाओ इतना बड़ा होगा तो छोटे गोपाल को उठाने आता नहीं, तो अपने सर पे रखता है। उन्हें पता ही नहीं कि ये चरण के खड़ाओ है, कोई सर के ऊपर रखता नहीं है। अब ये क्या संबंध है कि अपने भक्त की खड़ाओं भी ऊपर रख दे। फिर माता कहती है कि अभी इनका भोजन होगा तो चौकी लेके आओ। तभी इतनी बड़ी चौकी एक 4 साल का बालक कैसे उठा सकता है, लेकिन फिर भी वो जाकर वहां पर बहुत प्रयत्न करते हैं। ये है वो प्रेम। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगा। That is a natural conclusion. Such unalloyed devotees are distinct from the mixed devotees who approach the Lord for mitigation of miseries and poverty or because of inquisitiveness and speculation. चार प्रकार के लोग जो आते हैं ना, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, उनको भी यहां पर उनकी क्वालिटी बताइए कि ये कुछ पाने के लिए आते हैं। आर्त, अर्थराइटिस हो गया है, अर्थराइटिस अर्थ, या रोमांटिज्म है, या हार्ट प्रॉब्लम है, या जो भी कुछ है वो, कि हे भगवान इसको बचाओ, हे भगवान ये ठीक करो, हे भगवान ऐसा होना चाहिए। आर्त जिज्ञासु कि ये क्या है सब, ये भौतिक जगत ये सब क्या है, ये मैं कौन हूं, मैं क्यों यहां पे आया हूं, एक जिज्ञासा है। अर्थार्थी, ये सबसे कॉमन है कि आपके पास इतनी लक्ष्मियां हैं, उनके पास इतना पैसा है, और आप माधव हैं, आप श्रीपति हैं, श्रीनिवास हैं, इतने उतने हैं, तो थोड़ा सा इधर भी अगर कुछ भेजे तो कोई आपका नुकसान तो होने वाला है ही नहीं। कुछ एक पुराना गीत था, एक 1,25,00,000 की लॉटरी भेजो अपने भी नाम जी, कि भगवान को बोलते हैं कि आप तो बहुत लखपति हो, बड़े बड़े लखपतियों की भी लखपति हो, करोड़पति से भी करोड़पति हो, तो 1,25,00,000 की लॉटरी अपने नाम कर दो, क्या प्रॉब्लम है आपको। ज्यादा करके भिक्षुक जो भिखारी है वो यही कहता ना कि आपके पास इतना है तो थोड़ा देने में क्या तकलीफ है। और अंत में ज्ञानी कि नहीं, भगवान है, कौन है वो, उनको जानना चाहिए। अच्छा जान लिया, उनकी सेवा करना अपना कर्तव्य, करनी चाहिए। कैसे सेवा की जाती, इन चारों को भगवान कहते हैं सुकृति, कि ये पुण्यवान लोग हैं क्योंकि ये मेरे पास आए हैं, मेरे पास आए हैं और कुछ मांगते हैं मेरे से तो मैं जरूर देता हूं, मुझे क्या कमी है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत है इसलिए मैं देता हूं, ऐसा नहीं कि मेरा कुछ कम होगा इसलिए देता हूं, मेरा इनके साथ संबंध है पहले से, मैं उनका पिता हूं, मैं क्यों ना बोलूं। आप यहां पर जो माएं हैं या पिता हैं, अगर आपके बालक आपसे कहेंगे कल कुछ खाना बनेगा घर में, बोले हाँ बनेगा, तो मुझे मिलेगा, बोला हाँ जी मिलेगा, ये कोई पूछने की बात है, आपको इंसल्ट लगेगा कि ये मेरा बेटा मुझसे कहता है कि कुछ भोजन बनाओगे तो मुझे खिलाओगे क्या। आप कहेंगे कुछ दिमाग तो नहीं सठिया गया है, क्यों पूछ रहे हैं ऐसे, क्योंकि इट इज नेचुरल। आप कहेंगे मैं भूखी रहूंगी लेकिन तुमको खिलाऊंगी। अब शास्त्र का प्रश्न ऐसा है, ये प्रेम कहां से आ गया, ये प्रेम का सोर्स क्या है। आप कह रहे हैं कि ये मेरा बायोलॉजिकल पुत्र है या मेरी पुत्री है, मेरे बच्चे के प्रति प्रेम दिखाना है कोई, मैं कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रही हूं, लाखों करोड़ों माएं कर रही है, लाखों करोड़ों पिता कर रहे हैं। तो ये लाखों करोड़ों मां बाप को जो प्रेम का एक एक अंश देने वाले परम पिता हैं, क्या उनमें प्रेम नहीं है वो। दिस इज समथिंग वी हैव टू थिंक ऑफ, कि जो एक किरण आ रही है सूरज की, वो किरण इतनी उज्जवल दिख रही है, तो जो सूर्य है पूरा, उसमें कितनी शक्ति है, उसमें कितना तेज है। So the unalloyed devotees are transcendentally attached to one another. The Lord has nothing to reciprocate. Therefore he is called Atmaram. मुझे बहुत अच्छा लगा ये कि आत्माराम का मतलब क्या है. जैसे शुरुआत में कोई कहेगा कि भगवान ऐसे हैं जिनको आपकी पूजा की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके फूलों की, हार की, आपके भोजन बनाकर उनको भोग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है और वो आपको सब कुछ दे सकते हैं. आप कहेंगे ये तो बढ़िया है, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है और वो मेरे लिए सब करने के लिए तैयार है. अरे ऐसा तो व्यक्ति ढूंढ रहा था मैं कब से कि कौन ऐसा होगा जो मेरे सारे काम करेगा लेकिन मुझसे कुछ मांगेगा नहीं. और वास्तविक जीव कुछ कर भी नहीं सकता. प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः. तो गीता का अध्ययन करने से पता चलता है कि वास्तविक मैं भगवान को कुछ उनके लायक नहीं दे सकता. क्या दे सकता हूं मैं उनको? तो इसलिए आत्माराम का मतलब है उन विशुद्ध भक्तों के लिए भगवान ना तो कुछ दे सकते हैं ना तो उनको कुछ उनसे लेना है, इसलिए भगवान उनके साथ रिश्ता रखते हैं. कुछ दिनों पहले रघुनंदन दास ठाकुर, एक महान भक्त गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में, उनका तिरुभाव दिन था. नरहरि सरकार, मुकुंद सरकार और माधव दास तीन भाई, उसमें से मुकुंद मुस्लिम राजा के यहाँ पर काम करते थे और नरहरि बिल्कुल भजनिया, अपनी भजन भजन में व्यस्त पूरा दिन भर. और मुकुंद के पुत्र का नाम रघुनंदन. एक दिन अचानक काम आ गया कचहरी में, तो उन्होंने 5 साल के अपने बालक से कहा, और ये बालक पहले से ही बहुत शुद्ध, उसका व्यवहार गौर गणोदेश दीपिका में बताया है कि जो प्रद्युम्न है, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, उसमें से ये प्रद्युम्न रघुनंदन के रूप में आए. ही इज अ ट्रांसेंडेंटल क्यूपिड, दिव्य कामदेव है वो. तो पिता ने जस्ट ऐसे जाते जाते कहा कि बेटा मैं जा रहा हूं और हमारे घर में जो गोपीनाथ जी हैं उनको भोग लगाना है, तो माता जो भी बना के देगी वो महाप्रसाद भोग में निवेदन अवश्य करना. तो उन्होंने बोल दिया, बेटे ने कहा ठीक है. और जैसे ही रसोई बन गई तो रघुनंदन लेके आए. अब उनको कोई प्रणाम मंत्र, कोई बड़े बड़े मंत्र वगैरह तो मालूम नहीं. उन्होंने कहा गोपीनाथ जी कृपया ग्रहण कीजिए, खाइए. अब ये यहां पर बहुत गौर करने लायक बात है कि बाकी साधना भक्ति के लिए कई मंत्र, कई प्रकार की मुद्राएं सब बताया गया है, और यहां पर ये कह रहे हैं कि खाओ, तो भगवान ऐसे खाते नहीं. दुर्योधन के बारे में बसे बताते हैं कि जब पांडव कौरवों के बीच में समझौता करने के लिए भगवान ने कहा कि ठीक है मैं एक बार आकर बातचीत कराने के लिए कोशिश करूंगा, तो दुर्योधन ने कहा अब अच्छा मौका है, इसको थोड़ा इम्प्रेस करेंगे हम. ये बैकग्राउंड क्या है ये वासुदेव कृष्ण की? बोले पहले गांव का था और थोड़ा नाच गाना अच्छा लगता है उनको, युवतियों के साथ सुना है हमने कि बहुत नाच गाना करते हैं, खाता पीता बहुत अच्छा अच्छा है, वेरी फैस्टिडियस अबाउट इज ईटिंग. तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं. तो दुर्योधन ने ऐसे बड़े बड़े शिविर लगाए हस्तिनापुर में भगवान कृष्ण के जो आने का जो मार्ग है उसके ऊपर, और सब जगह पर बेस्ट कुक्स, सबसे अच्छे रसोइये बनाने वाले, और उनसे स्वादिष्ट व्यंजन बना के रख दिए, और गाने वाले, नाचने वाले, वाद्य बजाने वाले. तो उन्होंने कहा ये सब देखकर ये तो खुश हो जाएंगे और शायद मेरे अनुकूल भी हो जाएंगे. और भगवान मन में सोच रहे हैं ये सब क्या है, ये सब कचरा खाने के लिए आए हो ना इधर? मेरा मन तो कह रहा है केले का छिलका खाऊं, कहां पे? विदुर जी के घर में। तो भगवान ने किसी भी चीज को देखकर थोड़े भी इंप्रेस नहीं हुए, वो लोग गा रहे हैं, नाच रहे हैं, सब जगह पर व्यंजन वगैरह बना रहे हैं, तो दुर्योधन ने कहा कैसे लगा सब, ठीक ठाक तो है नहीं। तो एक लोकोक्ति है कि भगवान ने कहा देखो आपने प्रेम से तो दिया है ही नहीं और मुझे भूख कभी लगती ही नहीं, तो जहां पर कोई प्रेम से कुछ देगा तो मैं उस प्रेम को आदान प्रदान कर सकता हूं, लेकिन वैसे मुझे कभी भूख लगती ही नहीं क्योंकि मैं तो आत्मसंतुष्ट हूं। अब ये फिलॉसफी तो उसको समझ में नहीं आई कि ये क्या बोल रहा है कि मैं कभी भूख लगती नहीं, इतना माखन चोर नाम क्यों हो गया इसका फिर है? मुझे किसी चीज की आवश्यकता है ही नहीं तो ये सब चोरी करने की जरूरत क्या है फिर? ये गीता में बता क्यों रहे बार बार मेरे लिए क्यों, मत कर्म कृत मत परमो मत, ये सब मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए क्यों? मुझे ये दो मुझे वो दो, आपका सर्वस्व मुझे अर्पण करो। तो हम सोचते हैं कि ये भी तो है ना, इसको चाहिए कुछ तो मेरे से, क्यों चाहिए? तो दुर्योधन का भोग न खायो, रूखा साक विदुर घर खायो। ऐसे प्रेम पुजारी वो प्रेम की पूजक है, और विदुर घर में नहीं थे, उनकी पत्नी थी, तो वो देख रही है कि कृष्ण आ गए तो क्या करूं। ऐसा नहीं कि घर में इतना सामान है उसमें से कौन सा दूं, कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है घर में। तो केला मिला एक, तो केले को देखते देखते केले का छिलका निकाल रही है और प्रेम से अर्पण कर रही है, क्या वो छिलका अर्पण कर रही है, फल रख दिया बाजू में, और भगवान भी प्रेम के कारण देखते देखते उस छिलके को एक एक करके खा रहे हैं। तब विदुर आ गए इसलिए बच गए, नहीं तो पूरा छिलका खाए होते। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा हरी पगली क्या कर रही हो तुम? तब उसको समझ में आ गया कि मैं उनको केले का छिलका दे रही हूं, तब इनको समझ में आ गया कि मैं छिलका खा रहा हूं, ये कोई नॉर्मल लव नहीं है। भले पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका में कितना भी प्रेम हो, लेकिन अगर उसने कुछ बनाया है या आपके लिए प्रेम से मैंने कुछ बनाया है तो आप कहेंगे बनाया तो प्रेम से लेकिन शक्कर कम है इसमें, या आज की रसोई बहुत अच्छी है लेकिन शायद सब्जी थोड़ी लगी है नीचे से, ये कैसे समझ में आ गया कि जल गई है करके? मतलब प्रेम के लेवल ऊपर से हाफ ए मिलीमीटर का लेयर था, रियलिटी इज कि अच्छा नहीं बनाया, लेकिन जब वो प्रेम इतना घनीभूत हो जाए कि चाहे जला हुआ कचा कैसे भी है लेकिन प्रेम से खा रहा है कोई, तो इट्स नेचुरल ना, वी कांट इमिटेट इट, ये हम उसका नकल नहीं कर सकते। तो ये रहा विदुर और विदुर पत्नी का भगवान के ऊपर प्रेम। तो इसको कहते हैं आत्माराम कि ये उनसे मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, उनको मुझसे कुछ नहीं चाहिए, और फिर जो डीलिंग्स आरंभ होते हैं वो है शुद्ध प्रेम। तो रघुनंदन ने कहा कि मेरे पिताजी ने कहा कि भोग लगाओ, भोग का मतलब है भगवान खाते हैं, तो खा क्यों नहीं रहे गोपीनाथ? और उन्होंने जिस प्रेम से वो बताया कि गोपीनाथ ने वास्तविक आके खाना आरंभ कर दिया, और उन्होंने कहा अच्छा नहीं है पूरा नहीं खा रहे हो, तो उन्होंने पूरा खा लिया और खाली थाली लेकर छोटे बालक बाहर आ गए, और माता ने पूछा महाप्रसाद किधर है? तो उन्होंने कहा महाप्रसाद क्या महाप्रसाद, बोले गोपीनाथ जी सब खा लिए। तो पति शाम को आने के बाद उन्होंने बताया हमारे बालक ने कभी ऐसा किया नहीं है, कभी झूठ नहीं बोला है, कभी गलत वर्ताव नहीं किया है, तो आज अचानक उसने ऐसे क्या किया? बोले क्या किया उसने? बोले शायद वो सब खा गया, वो खुद खा लिया और कह रहा है कि मैंने भगवान को भोग लगाया और भगवान ने सब स्वीकार किया। तब ये शंका उनके मन में भी रही कि ये ऐसे क्यों हो गया। तो कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने बेटे से कहा कि आज फिर आप भोग लगाओ, मुझे आज जरूरी काम के लिए बाहर जाना है। तो जो लड्डू था वो लेकर बालक रघुनंदन आ गया अंदर, और तुरंत क्या हुआ कि मुकुंद दूसरे रास्ते से वापस आ गए घर में और छुपके से देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है अंदर मंदिर में, अंदर क्या हो रहा है। तो गोपीनाथ ने कहा कि रघुनंदन मेरा पेट भर गया है, मैं अभी ज्यादा नहीं खा सकता। बोला ना 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 ना, ये लड्डू आपको खाना ही होगा। तो भगवान ने आधा खा लिया, और भगवान तो भगवान है, वो जानते थे कि ये मुकुंद देख रहे ऊपर से। तो जस्ट उनको प्रूफ देने के लिए कि मैं खाता हूं अगर कोई इतने प्रेम से देता है तो तब मुकुंद आके इतने उनके का हृदय भर गया कि ये कितना महान बालक हमारे परिवार में पैदा हो गया है। और इसका इसका सबूत, इसका प्रूफ क्या था कि एक बार चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, मुकुंद ये दिख रहा है बुजुर्ग व्यक्ति है और रघुनंदन उनका 5-6-7 साल का लड़का है, मुकुंद जी आप और रघुनंदन में पिता कौन और पुत्र कौन है? तो सारे भक्त सोचने लगे कि ये कैसा प्रश्न है। अगर आप किसी 45 साल के बाप से उसके सामने उसके 10 साल के पुत्र को पूछोगे कि आप में बाप और बेटा कौन है? लेकिन भक्तों ने जान लिया कि महाप्रभु के ये प्रश्न में कोई रहस्य छुपा हुआ है। तो मुकुंद ने हंस के कहा कि महाप्रभु सत्य बात यही है कि रघुनंदन मेरा पिता है और मैं उसका पुत्र हूं। तो बाकी भक्तों ने हंसकर देखा कि ये कैसी बात कर रहे हैं आप। जो आपको कृष्ण भक्ति में उत्साहित करेगा, प्रेरणा देगा, अपने उज्जवल उदाहरण से आपको उपदेश देगा, वो वास्तविक आपका पिता है। He is your भक्ति सीड गिविंग फादर, भक्ति का बीज देने वाले या भक्ति में आपको उत्साहित करने वाले। तो इधर घड़ी नहीं है, टाइम कितना हो गया? तो इसलिए ही इज द मास्टर ऑफ ऑल मोनिस्ट्स हु सीक टू मर्ज इनटू द एग्जिस्टेंस ऑफ द लॉर्ड। सच मोनिस्ट्स मर्ज विद इन द पर्सनल इफल्जेंस ऑफ द लॉर्ड कॉल्ड द ब्रह्मज्योति, बट द डिवोटीज एंटर इनटू द ट्रांसेंडेंटल पास्टेंस ऑफ द लॉर्ड विच आर नेवर टू बी अंडरस्टूड एज मटीरियल। तो सेल्फ सेटिस्फाइड का मतलब है, कभी कभी साधकों में भी ये इच्छा हो जाती है कि हम भी किसी के ऊपर निर्भर न रहे। एक बार एक बरसाने कैंप के दरमियान में था उधर हमारे चिक्सोली मंदिर, राधा रास मंदिर में, तो वहाँ पे एक साउथ इंडियन व्यक्ति आए थे, एक बाबा जी बन के घूम रहे थे ब्रज में। और हम तो पूछते ना, बाबा कुछ पाओगे, कुछ प्रसाद चाहिए? उन्होंने कहा हाँ। तो उनकी झोली थी, उसमें से एक डब्बा निकाला उन्होंने, और हमने कहा यहाँ तो आज बहुत बड़ी फीस्ट है, बहुत व्यंजन बने। बोले नहीं नहीं, जो भी है सब इसमें डालो। तो एक्चुअली छाछ, सब्जी, चपाती, चावल और खीर, वो सब एक में ही गया हो, और उधर ही खा रहे थे वो। तो उन्होंने कहा मैं वेदांत का साधक साधना करता हूँ, वेदांत पढ़ता हूँ, लेकिन सुना है कि ब्रज, कैसे मालूम ब्रज में आ गए, लेकिन आ गए ब्रज में। और उनकी पॉलिसी थी न किसी से प्रेम न किसी से अप्रेम, मुझे अभी भी उनकी सेंटेंस याद है। मैं पूछ रहा था कि आप कहाँ जाते हो, कौन से मठ में हो या क्या आपकी साधना है? बोले किसी से प्रेम नहीं, किसी से अप्रेम नहीं। तो आज प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ के पता चलता है कि ये ब्रह्मवादियों का ब्रीद वाक्य है कि इस दुनिया से किसी से प्रेम नहीं करो, तो उसमें फंस जाओगे, और इस दुनिया की किसी चीज से अप्रेम मत करो, तो उसमें भी फंस जाओगे। तो फिर किस में प्रेम करें? फिर तो ब्रह्म स्थिति। तो इनको इस श्लोक में जो शब्द है कैवल्य पति, जिनको केवला अवस्था चाहिए, लेकिन ये केवल अवस्था भी भगवान के साथ संबंध होने पर ही मिलती है। मतलब किसके साथ तो संबंध होना ही है, यू कांट एस्केप रिलेशनशिप्स। तो डिवोटीज आर डिस्क्राइब्ड एज हायर देन कैवल्यवादीज। क्यों? क्योंकि दूसरी जगह पर भागवत में बताया गया है कि ये कैवल्य अवस्था प्राप्त करने के बाद भी उससे गिरने का डर होता है। जैसे कोई व्यक्ति बंबई की भीड़ भाड़ और यहां पर सब कुछ से तंग आकर बोला मैं जंगल में जाकर रहता हूं, तो कुछ दिन आनंद आएगा ना, कोई ट्रेन की आवाज नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। लेकिन फिर मन में आएगा अरे वो हमारे दोस्त लोग तो सब इधर है ही नहीं, कोई कोई मित्र नहीं, कोई बात करने के लिए नहीं है, कोई एक बात करने के लिए होता तो अच्छा होता था। बस ये इच्छा मन में आ गई तो कैसे कैसे क्यों ना वो चल के वापस आ जाएगा। फिर कुछ दिनों बाद वही तंग आ गया कि अरे बहुत हो गया। तो ऐसे बताया जाता है कि कुछ जीवों को ऐसी ब्रह्म स्थिति की मुक्ति कई बार लेनी पड़ती है। तंग आ गए, कठोर साधना की, मुक्ति की अवस्था प्राप्त की, वहां पे रहे बहुत लाखों साल तक, फिर वापस आ गए, फिर तंग आ गए, फिर ऊपर गए। और ऐसे में अगर किसी भक्त की एक क्षण के लिए भी, एक भक्त क्षण के लिए भी अनुभव हो गया, साक्षात्कार हो गया, भक्त की कृपा हो गई, तो ये जो महत् प्रयास बहुत परिश्रम से मुक्ति मिलती है उससे भी छुटकारा पा जाता है। तो मैं उस व्यक्ति के साथ बात कर रहा था तो वहां पे एक, अब वो लोग दिखते नहीं है, हम लोग अभी लास्ट में गए थे तभी वो दो तीन लोग थे जो हमारे बरसाने कैंप में बहुत सहायता करते थे शायद, और अपने कुछ काम में गए होंगे। तो वो व्यक्ति सिंपल था वहां का, एक ठाकुर नाम का लड़का था, ठाकुर। तो मैं उससे बात कर रहा था कि ये देखो क्या बात कर रहे हैं, ये वेदांतवादी है वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा आपको मालूम है वृंदावन की रज का मतलब क्या है? ये वृंदावन की माटी ने मुक्ति की मुक्ति करा दी। मैंने कहा देखो इसको बाकी कुछ मालूम नहीं होगा लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज मालूम है उसको। बोले ये माटी भगवान ने क्यों खाई? क्योंकि यहां पर उनके भक्त चलते हैं, और ये माटी खाने के बाद उन्होंने सिद्ध कर दिया कि जो मुक्ति देवी है, जो सबको, जो इतने लोग ओम शांति 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 करके मुक्ति पाते हैं, वो मुक्ति को भी जब इस सब लोगों से छुटकारा पाने की इच्छा होती है तो वो आकर यहां पर ब्रज में वो लौट देती है अपने आप को, वो इस मट्टी को अपने पर तिलक करती है। मुक्ति की मुक्ति कराने वाली ये ब्रज की रज है। तो ये है इस कैवल्यपति और आत्माराम शब्दों की व्याख्या। आगे इस प्रवचन को हम आगे और बढ़ाएंगे। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की। से कोई प्रश्न है या कोई कमेंट्स? इनका प्रश्न है कि कभी कभी भागवत में वर्णन आता है किसी ऋषि मुनि का जो सृष्टि के पहले भी अस्तित्व में थे, और जैसे ही सृष्टि बन गई तो वहां पर वो आकर कुछ अपना साधना करते हैं या कुछ उपदेश देते हैं, तो ये क्या है? यही प्रश्न है आपका। एक बात है, मतलब फंडामेंटल्स ऑफ लिबरेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है कि लिबरेशन का, मुक्ति का अर्थ है अनेक लेवल्स की मुक्ति। आप डॉक्टर हैं तो मैं आपको डॉक्टर का मेडिकल उदाहरण देता हूं। किसी व्यक्ति को वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर रात को एक ट्रक ने डैश करके, वो मोटरसाइकिल पे था और ट्रक ऐसे ही चला गया, और पिच डार्क अंधेरा है, तो ये जो ड्राइवर है इस टू व्हीलर का, वो किसी डिच में, किसी म्युनिसिपल गड्ढे में गिरा है और अनकॉन्शियस है, उसे शुद्ध नहीं, शुद्धि नहीं अपनी, तो वो मर भी सकता है वो, अगर ऐसे ही उसको निगलेक्ट किया गया तो। तो लकीली किसी ने उसको देखा और कहा चलो इसको भक्ति विधान ले जाते, तो कम से कम उसकी रिकवरी का एक लेवल तो आ गया कि एटलीस्ट नाउ इज हैविंग मेडिकल अटेंशन। फिर आप जैसे कोई डॉक्टर ने उसको अटेंड किया कि क्या हो रहा है इसको, बोले यहां पे ट्रॉमा है, कुछ फ्रैक्चर है वगैरह वगैरह वगैरह। अब दो तीन दिन में डॉक्टर्स को डेफिनेट आइडिया आ गई कि इसका प्रॉब्लम क्या है, तो ये और एक लेवल ऊपर आ गए। एक हफ्ते बाद उसके सारे प्रॉब्लम्स लगभग समझ में आ गए। अभी खावल जो खाली जो फ्रैक्चर है उसको कास्ट में डालकर उसको 3 हफ्ते रखना है, इसे कुछ करना नहीं है, अभी खाली उसको बोन को हील होने देना है। तो ये एक प्रकार का सॉल्यूशन आ गया। फिर वो जब 5 हफ्ते बाद घर निकला वापस, तो उसे कहते हैं कि वापस आ जाओ देखने के लिए कि सब ठीक ठाक है कि नहीं। अंत में देखा जाएगा कि 1 साल के बाद वो अभी कह रहा है कि नाउ आई एम फुली फिट, अब मैं जो पहले जो मैं कार्य करता था अब सब काम मैं आज कर सकता हूं। इसी प्रकार से हम लिबरेशन को समझ सकते हैं कि भगवान का सान्निध्य छूटना और यहां पर आकर भौतिक 3 गुणों के अंदर जो भी कुछ फंस जाना, ये फंस जाने का मतलब है हम एक्सीडेंट में ग्रस्त हो गए, अभी हम यहां पर ऐसे ही पड़े हैं। फिर थोड़ा सा कुछ गीता पढ़ लिया, भागवत पढ़ लिया, वेदांत पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, धीरे 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 धीरे, अनलेस एंड अंटिल जो व्यक्ति भगवत सेवा में फिर नियुक्त नहीं होता तब तक उसकी मुक्ति को पूर्ण नहीं कहा जाता। क्लियर सो फार? अब इसमें ये मुक्ति डिसाइड कौन करता है? हु डिसाइड्स के मुझे अभी और करना है और करना है? कई बार ऐसे आपने देखा होगा पेशेंट्स कह रहे हैं डॉक्टर अभी सब ठीक है अब मैं जाता हूं, अब नहीं ना 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 अभी मत जाओ। जैसे माधवन प्रभु के ऑफिस में दिखता है डामा, डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, डॉक्टर बोल रहे हैं कि भैया मत जाओ, बोलते नहीं नहीं बहुत हो गया अभी मैं तंग आ चुका इस मेडिसिन से, तब कहें ठीक है आपकी इच्छा। तो वैसे ये जो इंडिविजुअल डिजायर है, ये इंडिविजुअल डिजायर भगवान हमसे कभी छीनते नहीं। तो कई ऐसे ऋषि मुनि हैं जिनको अभी तक भगवान के भक्त के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं हो गया है, उनको इतना पता है कि ये संसार में लिप्त नहीं होना, यहां पर आकर विवाह आदि किसी भी व्यक्ति के साथ वो प्रेम का संबंध है वो सब नहीं चाहते। वो इतना समझ में आ गया है कि इस संसार में लिप्त होना घातक है, लेकिन इसके आगे क्या करना है ये भी अभी तक किसी ने रिवील नहीं किया है उनको। दे आर प्योर, उनके मन में कोई सांसारिक भोग की अभिलाषा नहीं है, तो फिर उनके लिए क्या रास्ता है फिर? सो नाउ ये मैं कह रहा हूं एक कैटेगरी के लोग। दूसरा आपके प्रश्न का अर्थ इस प्रकार से समझ में आ सकता है कि क्रिएशन इज नॉट जस्ट वन टाइम अफेयर ना, जैसे डिसोल्यूशन जो है संसार को बंद करना, ये हर जैसे हर रात को कोई फैक्ट्री बंद हो जाती है, रात को 11:30 बजे चौकीदार आके शटर बंद करके या दुकान को शटर बंद करके ताला मार के चला जाता है। तो थिंक लाइक दिस कि यूनिवर्स को भी 12 घंटे बाद, ब्रह्मा जी के 12 घंटे बाद बंद किया जाता है। ऐसे 100 वर्ष बीत गए ब्रह्मा जी के, फिर एक दिन म्युनिसिपैलिटी के लोग आके वो पूरा बिल्डिंग को ही तोड़ देते हैं। होता है ना, 100 वर्ष पुरानी बिल्डिंग है उसको तोड़ना चाहिए। वेस्टर्न यूरोप में क्या होता है, डिमोलिशन होता है, डिटोनेटर्स डायनामाइट लगाकर 7-8-20 स्टोरीज की बिल्डिंग को भी 7 सेकंड के अंदर पूरा राख कर सकते हैं वो लोग। कभी देखा है डिमोलिशन होते हुए, जैसे वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कैसे नीचे आ गया वैसे। तो जब पूरा ब्रह्मांड 100% फॉर एवर नष्ट हो जाता है, फिर वो ब्रह्मा जी का भी करियर खत्म हो गया, वो ब्रह्मा जी के भी उसको भी उनका एंड माना जाता है। लेकिन उनके हर 12 घंटे में डिसोल्यूशन होता रहता है। तो ये ऋषि मुनि जो हमको बताया जाता है कि ये वापस आ गए, ये वो 12 घंटे वाले डिसोल्यूशन में उस रात के पहले दे ट्रांसफर देमसेल्व्स टू सम हायर प्लैनेट। जो नीचे के जो प्लैनेट्स हैं मध्य स्थिति तक, उनमें पानी भर जाता है तो लोग दूर जाते हैं। जैसे कई शहर में कभी बाढ़ आती है तो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, झोपड़पट्टी रहने वाले बेचारे, कोई बह गया, किसी का घर बह गया, लेकिन अगर कोई पैसे वाला है व्यक्ति, बोलेगा नहीं नहीं फिर मैं और कहीं जाकर रहता हूँ, तो उसके पास पैसा है, उसके पास शक्ति है, वो अपने और दूसरा घर भी ढूंढ सकता है। तो वैसे हम अगर यहाँ पर प्रलय आए हम कहीं नहीं जा सकते, हम तो डूबना है हमको, लेकिन यहाँ कोई ऋषि रहेंगे अभी भी हिमालय में तपस्या करते हुए, उन्होंने देखा कि यहाँ पर झगड़ा वगड़ा बहुत हो रहा है लोग का, इंडिया पाकिस्तान, अगर उनके मन में इच्छा रही तो चले गए कहीं और, उनको पूर्ण लिबरेशन नहीं मिली है, उसकी खोज में है वो, दे आर हैप्पी इन वन सेंस, आत्माराम है वो, इसलिए वो आत्माराम वर्स दिया जाता है चैतन्य चरितामृत में, आत्मारामाश्च मुनयो निर्ग्रंथि अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिम् इत्थं भूत गुणोहरि, कि पूर्ण आत्माराम होने पर भी व्यक्ति भगवान की सेवा में लिप्त हो सकता है, युक्त हो सकता है, अगर उसके ऊपर एक भक्त का आशीर्वाद रहा तो। श्रील प्रभुपाद की, श्री राधा गोपीनाथ की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की, निताई गौर प्रेमानंदी, धन्यवाद।